ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 1 सितंबर 2024 के लिए है। विषय: मसीह यीशु, स्वर्णपथ, यूहन्ना। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मसीह यीशु। उत्तरदायी अध्ययन मलाकी। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूं और वो मार्ग को मेरे आगे सीधा करेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा, और जब वो दिखाई दे तो कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वो रुपये कताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लावियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने के रुपये के नियन निर्मल करेगा। तब वो यहोवा की भेंट धाम से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहले दिनों में और प्राचीन अकाल में भाती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँगा, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं होगे, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धाम का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम ठीक हो जाओगे। पाठ उपदेश बाइबल में से व्यवस्था विवरण। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वचा उनको कह सुनाऊंगा। जकरिया। हे सेऊन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धार्मी और उद्धार पाया हुआ है। यूहन्ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। लूका। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई, और वो नासरत में आया जहां वो पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बिंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय में सबकी आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। लूका। थोड़े दिन के बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया, और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वो परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्य अद्विकता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। मरकस। और वो आराधनालय में फिर गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वो उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वो सब्बत के दिन में उसे ठीक करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, यह सब्बत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वो चुप रहे, और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ ठीक हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सामति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें। योहन्ना। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वो आदर जो अद्वित परमेश्वर की ओर से नहीं है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। योहन्ना। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। प्रेरितों के काम। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, और वो उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया है। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्य अद्विकता उठाएगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को आशीष दे। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। यीशु के मिशन ने भविष्यवाणी की पुष्टि की और पुराने समय के तथाकथित चमत्कारों को ईश्वरीय शक्ति के प्राकृतिक प्रदर्शनों के रूप में समझाया, जिन्हें समझा नहीं गया था। यीशु के कार्यों ने मसीहा पद पर उसके दावे को स्थापित किया। योहन्ना के प्रश्न के उत्तर में कि क्या आने वाला तू ही है, यीशु ने सकारात्मक उत्तर दिया। अपने सिद्धांत का उल्लेख करने की बजाय अपने कार्यों का वर्णन किया तथा विश्वास व्यक्त किया कि उपचार देने की दिव्य शक्ति का ये प्रदर्शन प्रश्न का पूर्ण उत्तर देगा। इसलिए उसका जवाब था कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर योहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। दूसरे शब्दों में उन्होंने उन सभी को अपना आशीर्वाद दिया जो इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि दिव्य मन से आने वाले ऐसे प्रभाव ईश्वर की एकता को सिद्ध करते हैं। वो दिव्य सिद्धांत जो सभी सद्भाव को सामने लाता है। यीशु ने एक बार अपनी शिक्षाओं के विषय में कहा था कि मेरे उपदेश मेरे नहीं परंतु मेरे भेजने वाले के हैं। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वो परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। यूहन्ना 7:16-17। हमारे मास्टर ने बीमारों को ठीक किया, मसीही उपचार का अभ्यास किया और अपने छात्रों को इसके दिव्य सिद्धांत की समानताओं को सिखाया, लेकिन उन्होंने बीमारी को ठीक करने और रोकने के इस सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं दिया। क्रिश्चियन साइंस में इस नियम की खोज की जानी बाकी है। एक शुद्ध स्नेह अच्छाई का रूप लेता है, लेकिन विज्ञान केवल अच्छाई के दिव्य सिद्धांत को प्रकट करता है और उसके नियमों का प्रदर्शन करता है। जब हम यीशु को मानते हैं और जो कुछ उसने नश्वर के लिए किया उसके हृदय से आभार प्रकट करते हैं, अपने प्यार के रास्ते को केवल महिमा के सिंहासन तक फैलाकर हमारे लिए रास्ता तलाश करने वाली व्यर्थ पीड़ा में फिर भी यीशु ने हमें व्यक्तिगत अनुभव नहीं दिया। अगर हम उसकी आज्ञाओं का ईमानदारी से पालन करें और सभी ने अपने प्रेम के प्रदर्शन के अनुपात में पीने के लिए दुखड़ प्रयास किए, जब तक सभी दिव्य प्रेम के माध्यम से मुक्त नहीं हो जाते। मसीह आत्मा था जिससे यीशु ने अपने बयानों में निहित किया था, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मैं और पिता एक हैं। ये मसीह या यीशु की दिव्यता उसकी दिव्य प्रकृति थी जो उसे अनुप्रंति करती थी। ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम ने पाप, बीमारी और मृत्यु पर यीशु को अधिकार दिया। उसका मिशन आकाशीय विज्ञान को प्रकट करना था, ये साबित करने के लिए कि ईश्वर क्या है, वो मनुष्य के लिए क्या करता है। हमारे मास्टर ने कोई विचार, सिद्धांत या विश्वासन नहीं सिखाया। ये सभी वास्तविक लोगों को दिव्य सिद्धांत था जो उन्होंने सिखाया और अभ्यास किया। मसीही धर्म का उनका प्रमाण, धाम और पूजा का कोई रूप या प्रणाली नहीं था, लेकिन क्रिश्चियन साइंस जो जीवन और प्रेम के सम्मान जैसे को दर्शाता है। हमारे स्वर्गीय पिता दिव्य प्रेम मांग करते हैं कि सभी पुरुषों को हमारे गुरु और प्रीतों के उदाहरण का पालन करना चाहिए, ना कि केवल उनके व्यक्तित्व की पूजा करनी चाहिए। ये दुख के व्याख्या अंश ईश्वरीय सेवा आमतौर पर दैनिक कर्मों की बजाय सर्वजनिक पूजा का मतलब है। मसीही धर्म की प्रकृति शांतिपूर्ण और धन्य है, लेकिन राज्य में प्रवेश करने के लिए आशा के लंगर को शकीना में सामग्री के पर्दे से परे डाल दिया जाना चाहिए, जिसमें यीशु हमारे जाने से पहले चला गया था। और सामग्री से परे ये उन्नति धर्मियों की खुशियों और विजय के साथ साथ उनके दुखों और कष्टों से भी होनी चाहिए। अपने गुरु की तरह हमें भावतिक अर्थों में होने के आध्यात्मिक अर्थ से प्रस्थान करना चाहिए। वो कौन है जो हमारी आज्ञाकारिता की मांग करता है? वो जो धर्म ग्रंथ की भाषा में स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसारन काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता कि तूने ये क्या किया। सत्य, जीवन और प्रेम ही मनुष्य पर एकमात्र वेद और शाश्वत मांग है, और वो आध्यात्मिक कानून निर्माता है जो ईश्वरीय विधियों के माध्यम से आज्ञाकारिता को लागू करते हैं। यीशु के तथाकथित अनुयायी कब उसके सभी मार्गों में उसका अनुसरण करना और उसके महान कार्यों का अनुकरण करना सीखेंगे। ये संभव है। हाँ, ये प्रतीक बच्चे, पुरुष और महिला का कर्तव्य और विशेष अधिकार है कि उन्हें कुछ हद तक स्वस्थ और पवित्रता के सत्य और जीवन के प्रदर्शन द्वारा मालक के उदाहरण का पालन करना चाहिए। सच्ची खुशी के लिए मनुष्य को अपने सिद्धांत दिव्य प्रेम के साथ समान जैसे करना चाहिए। पुत्र को पिता के अनुरूप होना चाहिए, मसीह के अनुरूप होना चाहिए। ईश्वरीय विज्ञान के अनुसार मनुष्य एक प्रकार से पूर्ण रूप से मन के रूप में है जो उसे बनाता है। मनुष्य होने का सत्य मनुष्य को समान जैसे पूर्ण और अमर बनाता है, जबकि त्रुटि नश्वर और कलाकारी होती है। दिव्य विज्ञान के चिन्ह हमारे गुरु के मार्ग को दर्शाते हैं तथा मसीहियों से मात्र दावे के स्थान पर उनके द्वारा दिए गए प्रमाण की उपेक्षा करते हैं। हम दुनिया से आध्यात्मिक अज्ञानता को छुपा सकते हैं, लेकिन अज्ञानता या पखंड के माध्यम से आध्यात्मिक अच्छाई के विज्ञान और प्रदर्शन में सभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन भविष्य अद्वैताओं और प्रेरितों के प्राचीन प्रदर्शनों की पुष्टि करने और उन्हें दोहराने के लिए उसे मन, जो मसीह यीशु में भी था, हमेशा विज्ञान के पत्र के साथ होना चाहिए। स्वर्ग के लिए एक रास्ता है सिद्ध भाव, और ईश्वरीय विज्ञान में मसीह हमें इस मार्ग को दिखाता है। कोई और वास्तविकता नहीं है। अच्छे ईश्वर और उसके प्रतिबिंब को जानने और इंद्रियों के दुख और सुख से श्रेष्ठ होने के अलावा जीवन की कोई अन्य चेतना नहीं है। क्रिश्चियन साइंस ये प्रदर्शित करता है कि कोई भी नहीं बल्कि हृदय में शुद्ध ही परमेश्वर को देख सकता है, जैसा कि सुसमाचार सिखाता है। उसकी शुद्धता के अनुपात में मनुष्य परिपूर्ण है और पूर्णता आकाशी होने का क्रम है, जो जीवन को मसीह में प्रदर्शित करता है। जीवन का आध्यात्मिक आदर्श है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए। ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे, और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।